मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 4 जून 2018 है और आज के इस afias.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं, हार्दिक रूप से अभिनंदन भी करता हूं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। भविष्य के लिए शुभकामनाएं कैसे? दो प्रकार से फ्रेंड्स। पहला तो यह कि आप सब में से जो भी प्री एग्जाम में अपीयर हुए हैं, उनके रिजल्ट अच्छे हों, इसके लिए शुभकामनाएं। और जो अपीयर नहीं हुए हैं और 2019 के एग्जाम में अपीयर होना चाह रहे हैं, उनकी सफलता के लिए भी शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि वह आप सबके दिमाग को वह मजबूती प्रदान करे कि कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति, कोई भी बहाना आपके दिमाग को आपके इस लक्ष्य से विमुख न कर सके। तो दोस्तों, आज मैं अपने उन दोस्तों का स्वागत नहीं कर पा रहा हूं जिन्होंने इस बीच में एकेडमी की जो क्लासेस होने वाली है अक्टूबर नवंबर में, उनके लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। उसका कारण है फ्रेंड्स कि आज मेरे पास बात करने के लिए प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के बहुत सी चीजें हैं और वो लिस्ट थोड़ी सी लंबी है, तो वो मैं कल आपसे बातें करूंगा और आप सबका तहे दिल से स्वागत करूंगा। एक दिन बस मुझे आप और दे दें, क्योंकि आज मुझे प्रारंभिक परीक्षा के बारे में आप सबसे बातें करनी है और यही हमारा आज का मुख्य विषय भी है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम न्यूज एनालिसिस को देख लेते हैं। एक दो इंपॉर्टेंट खबरें कल के समाचार में रही हैं। दोस्तों, पहली खबर यह है कि आपने देखा कि अब्दुल कलाम द्वीप जो ओडिशा में है, वहां से अग्नि 5 का सफल प्रक्षेपण किया गया है। अग्नि 5 ये एक मिसाइल है और इसकी खासियत यह है कि इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसका जो रेंज है, इसकी जो मारक क्षमता है वो काफी बड़ी है, लगभग 5000 किलोमीटर तक। और इसके साथ ही भारत जो सुपर एक्सक्लूसिव क्लब है मिसाइल बनाने वाले, उनमें शामिल हो चुका है अग्नि 5। ये आपको मालूम होना चाहिए, अग्नि 5 जिसका ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से प्रक्षेपण, सफल प्रक्षेपण, टेस्ट कह लीजिए, किया गया है। जो दूसरी खबर है मित्रों, वो यमन को लेकर थी कि किस तरीके से यमन का एक द्वीप है सोकोत्रा। देखिए, मैं इन पर जानबूझकर जोर दे रहा हूं। इस बार जो सिविल सर्विस का पेपर आया है प्री का, उसी को ध्यान में रखते हुए यमन का एक द्वीप है सोकोत्रा, वहां से भारतीयों को बचाया गया है, हमारे नेवी ने बचाया है। और वहां जो तूफान आया था वो था मेकुनू, ये भी नाम आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ होता क्या है, होता यह है कि जब हम यमन के बारे में बात करते हैं तो यमन क्या है? देखिए, यमन एशिया का राष्ट्र है, तो बट नेचुरल है कि हमारे लिए यमन महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको सिविल सर्विस के बारे में इसी एंगल से सोचना पड़ेगा। दूसरा, आप देखें कि यमन और भारत में दूरी कितनी है, आपको तुरंत मैप कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप साइंटिफिक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो ये मेहनत आपको करनी होगी। आप मैप देखिए तो मैप में आप पाएंगे कि यमन और जो हमारा पश्चिम भाग है समुद्री तट का, जो पूरा का पूरा साउथ का पश्चिम भाग है, और इधर बॉम्बे वगैरह का जो हमारा बंदरगाह वगैरह है, तो आपको पता लगेगा यमन और हमारे पश्चिम तट के बीच में सिर्फ समुद्र है, और वो समुद्र अरबियन समुद्र, अरब सागर। यानी कि अरब सागर को पार करने के बाद हम तुरंत यमन में पहुंच जाते हैं, तो समुद्र के रास्ते में यमन हमारे काफी करीब होता है। फिर आप जब यमन को देखेंगे तो देखेंगे कि वो भी एक समुद्र के किनारे बसा हुआ है, और ऊपर पूरा का पूरा जो रेड सी है आपका लाल सागर से लेकर के और इधर वो अदन की खाड़ी तक पहुंचता है, जिसके बाद अरब सागर से जुड़ जाता है। तो जब आप नक्शे में थोड़ा सा इसको इस तरीके से देख लेते हैं एक बार, तो आपके दिमाग में उसका बिंब बन जाता है। और अगर सिविल सर्विस में पूछ लिया जाता है फिर यमन के बारे में कुछ भी कि किस सागर पर स्थित है, कहां है, किस दिशा में है, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। और इसी तरीके से धीरे धीरे पूरी ज्योग्राफी साल भर की प्रिपरेशन के बाद आपके दिमाग में समा चुकी होती है, और वही प्रश्न जो दूसरों को बड़े जटिल लगते हैं, उलझाने वाले और कठिन लगते हैं, आपके लिए आसान बन जाते हैं। दूसरा तो कम से कम मुझे कोई और तरीका नजर नहीं आता। तो दोस्तों, ये जो अमन है ये मध्य एशिया का देश है, बेसिकली रेगिस्तानी है। यहां द्वीप भी हैं, लगभग 20 द्वीप हैं, जिसमें से एक सोकोत्रा द्वीप है जहां से हमारे भारतीयों को बचाया गया है। इसकी राजधानी अदन है, बट नेचुरल इस्लामिक कंट्री है, आबादी बहुत कम है, लगभग 3.25 करोड़ की आबादी है और मैं चाहूंगा कि यमन को आप डेफिनेटली नक्शे पर जरूर देखें। फ्रेंड्स, जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, इस बीच जो घटना एक घटी है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 3 देशों की यात्रा की, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर, ये बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। खासकर आप नाम सुनते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी, देन एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उस लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जिस तरह से चीन हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करता चला जा रहा है, उस लिहाज से भारत और इंडोनेशिया के बीच में अभी जो समझौते हुए हैं बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर रणनीतिक समझौते। इसके लिए मैं आपको एक क्लिपिंग्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं और मुझे यकीन है इससे पहले भी आपने क्लिपिंग्स देखी हैं और न्यूज भी सुने हैं, काफी कुछ आपके समझ में आ चुकी होगी बात, लेकिन आगे भी अगर कुछ ऐसी चीजें मिलती रही तो मैं डेफिनेटली आपको उपलब्ध कराऊंगा। फिर फ्रेंड्स, अभी न्यूज के बारे में इतना ही, अब मैं आता हूं प्रारंभिक परीक्षा पर। दोस्तों, कल आपकी प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हो चुकी है, राइट? मुझे नहीं मालूम कि आप उसमें अपीयर हुए थे या नहीं हुए थे। जैसे ही परीक्षा खत्म हुई है, आप देखिए कि यूट्यूब पर बहुत सी चीजें आनी शुरू हो गई हैं, लोग अपने अपने ढंग से उसकी समीक्षाएं देना उन लोगों ने शुरू कर दिया है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि कुछ हड़बड़ी में बातें ज्यादा कही जा रही हैं। कोई कह रहा है कि पेपर बहुत कठिन था तो जो कट ऑफ मार्क्स है वो 50 के आसपास आएगा, कोई कह रहा है कि नहीं, बीच बीच का ही था, मॉडरेट था, पिछले जैसा ही था, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मैं अपने प्रिय श्रोताओं को थोड़ा सा सतर्क करना चाहूंगा कि थोड़ा सा धैर्य रखें, इतनी हड़बड़ी की क्या जरूरत है। इत्मीनान से पेपर को देखिए, इत्मीनान से उसकी समीक्षा कर लीजिए। 2 दिन पहले पता लग जाएगा तो क्या बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और 2 दिन बाद में ही पता लग जाएगा तो कौन सा नुकसान हो जाएगा। तो मित्रों, मैं अभी उसकी उस रूप में समीक्षा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं समीक्षा करूंगा, लेकिन पूरी तरह से स्थिर चित्त से सारी चीजों को देखने और समझने के बाद कुछ कहना मेरी समझ से ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये आपके लिए 2019 के एग्जाम के लिए रोड मैप का काम करेगा। इसी रोड मैप के तहत फिर आपको 2019 की तैयारी करनी चाहिए। एक बात मैं सामान्य तौर पर कहना चाहूंगा दोस्तों, कि जिस तरह का पेपर आया है, नो डाउट कि मुझे नहीं लगता कि जो कट ऑफ मार्क्स होगा वो 55% से कम होना चाहिए, 55% के आसपास कट ऑफ मार्क्स होने चाहिए। पिछली बार का 52 है, उससे पहले आप देख चुके हैं कि 58 तक जा चुका है, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, तो 55 तक जाएगा। पेपर कठिन नहीं था, मध्यम दर्जे का था। इस बार के पेपर की जो एक मूलभूत पहले से अलगाव की मैं अगर बात करूं तो वो ये था कि इस बार करंट अफेयर से क्वेश्चंस कम थे और किताबी क्वेश्चंस ज्यादा थे जो किताब से आए हुए थे, लेकिन जो किताब से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका कोई न कोई रिलेशन, सभी का नहीं लेकिन थोड़े से प्रश्नों का रिलेशन करंट अफेयर्स से था, उसके बारे में हम लोग आगे चल करके बातें करेंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे लाला लाजपत राय, उन पर एक प्रश्न आया। अब सवाल यह है कि लाला लाजपत राय पर ही प्रश्न क्यों आया, तो आप देखेंगे तो लगेगा कि यह तो पूरी तरह से इतिहास का प्रश्न, हमारे फ्रीडम मूवमेंट का प्रश्न है। लेकिन मित्रों, अगर हमने जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए थे आप उस पूरी लिस्ट में देखिए तो लाला लाजपत राय को स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। आप देखिए कि इतने सारे फ्रीडम फाइटर की बात होती है लेकिन मेंशन किया गया है लाला लाजपत राय और उन्हीं पर प्रश्न पूछा गया है, तो कोई रीजन है लाला लाजपत राय पर प्रश्न पूछने का, और वो करंट अफेयर्स का है लेकिन वैसे वो इतिहास का दिखाई देता है। यही सिविल सर्विस की वो तीसरी आंख होती है जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट को धीरे धीरे अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। खैर, तो स्पेशली मित्रों जो मैं 55% की भी बात कर रहा हूं, लेकिन अगर आपको यह यकीन है कि आप 50% प्लस में आएंगे तो आपको मेंस की तैयारी के लिए कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, आज से ही मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। इसको मैं और थोड़ा सा पीछे ले जा सकता हूं, क्योंकि देखिए एग्जैक्ट आपका स्कोर कितना होगा कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, थोड़ा सा और पीछे चले जाइए कि 47-48 तक भी आपको उम्मीद है तो मेंस की तैयारी आप करने लगी। और वैसे भी अगर आपको 2019 में ही बैठना है तो मेंस की तैयारी आप करेंगे तो वो कोई आपको आपकी बेकार नहीं जाएगी, और कैसे आपकी सिस्टमैटिक तैयारी होगी 2019 की, इस पर भी हम लोग बातें करेंगे। मित्रों, फिलहाल मैं एक विशेष बात आपसे ये करना चाहूंगा कि सच में क्या हम सिविल सर्विस के प्री में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहां तक कि जो मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या हम उनका थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। देखिए इतना रोज आप साल सवा साल के पिछले प्रश्न पूछे जाते हैं, इतने अखबार छप रहे हैं, इतने चैनल्स के माध्यम से खबरें आ रही हैं, अब पत्रिकाओं के माध्यम से खबरें आ रही हैं, तो सवाल ये उठता है, चैलेंज भी है कि उनकी तैयारी करें आप कैसे, कितनों को याद करें। दोस्तों एक बात मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप उसे करें भी। आप देखिए कि इस बार सिविल सर्विस प्री एग्जामिनेशन के लिए हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं जो यूट्यूब पर भी दिया हुआ है, और उसके साथ ही साथ उसमें यह भी बताया गया है कि इसमें उसमें एक लिंक है जिसके माध्यम से आप इन पर आधारित क्वेश्चंस जो 250 मॉक टेस्ट के तहत हमने क्वेश्चंस दिए हैं उस तक आप पहुंच जाएंगे। नो डाउट कि जो 250 क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को ये जो लिस्ट है इम्पॉर्टेंट टॉपिक की वो रिप्रेजेंट नहीं करते, उसमें से कुछ चीजें अलग से भी हैं। अगर आप इन दोनों को मिला देंगे तो आप पाएंगे कि करंट अफेयर्स से में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं करंट अफेयर्स से बेस्ड, उनमें बहुत से क्वेश्चंस इसी दायरे में हैं। मैं नहीं कहता कि सभी इस दायरे में हैं, इसी दायरे में हैं। और बड़ी बात यह है कि इस बार करंट अफेयर्स से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि कम क्वेश्चंस में भी बहुत से जो पॉइंट हैं वो केवल उस लिस्ट से और मॉक टेस्ट में दिए गए क्वेश्चन से कवर हो जाते हैं। मैं एक आपकी केवल सूचना के लिए कुछ मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं, आप चाहें तो आप मिलान कर सकते हैं। मित्रों एक बार थोड़े से आप टॉपिक सुन लीजिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी, इसके लिए आपको मेंस में भी मेंस के पैटर्न पर भी क्वेश्चन लिखने के लिए दिया गया था। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी, चंपारण्य सत्याग्रह, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी रिपोर्ट, लाला लाजपत राय, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, वन्नाक्राई, पेट्या और टर्नल ब्लू, कैटलोनिया, भीम ऐप, अनुच्छेद 14, 17, 21। दोस्तों आप सोच करके देखिए कि आप देखिए लिस्ट में उसमें मेंशन किया गया है 14, 17, 21, इन्हीं को मेंशन किया गया, हालांकि उसमें एक दो और भी हैं। मतलब अनुच्छेद के अगर आप फंडामेंटल राइट्स को लेंगे तो फंडामेंटल राइट्स में बहुत से अनुच्छेद हैं, उसमें से केवल तीन छांट करके आपको बताए गए हैं, 14, 17 और 21। आप बेहतर होगा कि आप मिलान करें, वहां उन भीड़ से बिल्कुल हटा करके कर दिया गया है कि नहीं आप केवल इन तीन चार अनुच्छेद को ध्यान से देख लीजिए, ये नहीं कि इसमें से आएगा ही, इन पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप ध्यान देते हैं तो गलत होने की आशंका कम हो जाती है। फिर मित्रों न्यूनतम समर्थन मूल्य, PSLV, राष्ट्रपति का चुनाव, अलेप्पो, मोशूल, ये पॉइंट्स बकायदे आपको लिस्ट में मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट में भी मिलेंगे। और याद रखिए कि मॉक टेस्ट के लिए जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनकी संख्या हजारों में नहीं है, उनकी संख्या सिर्फ 250 है, और यहां जो टॉपिक भी आपको दिए गए हैं इनकी संख्या 117 या 119 ही है, बस केवल इतने। मतलब ये नहीं है कि आपके सामने एक ढेर परस दिया गया हजारों क्वेश्चंस का और हजारों टॉपिक्स का और कहा गया है कि आप ये सब तैयार कर लीजिए, कि उसमें से कुछ ना कुछ तो आ जाएगा, नहीं, बहुत ही सेलेक्टिव तरीके से आपको उपलब्ध कराए गए हैं। दोस्तों एक ऐसे एग्जामिनेशन में जहां 0.1% आपकी सफलता और असफलता का कारण बन सकता है, वहां अगर इस तरीके से इतने सारे पॉइंट और वो भी थोड़े से क्वेश्चन में से, इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस अलग हैं, ज्योग्राफी के अलग हैं, इकोनॉमिक्स सब अलग हैं जो सब्जेक्ट से आए हैं, इसमें मैं केवल करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं क्योंकि ये जो बेस है इसका केवल करंट अफेयर्स है, उसमें से इतने आ जाना आप यूं कह लीजिए कि कम बड़ी बात नहीं है, और आश्चर्य की बात तो है ही नहीं। आश्चर्य की बात इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आपके अंदर वो सेंस है तो आप बड़े आराम से अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके के प्रश्न आएंगे, और आप बकायदे छांट सकते हैं। और मुझे लगता है कि सिविल सर्विस की तैयारी में सब अलग अलग पैटर्न के साथ साथ इस पैटर्न का इस्तेमाल तो किया ही जाना चाहिए, क्योंकि यही हमारी तैयारी को आप कह लीजिए रिफाइन करता है, एक विशिष्ट बनाता है, और यही तैयारी हमारी हमें दूसरों से आगे ले जाती है, और सिलेक्शन का यही एक आधार भी होता है। दोस्तों ये जो मैं आपको डिटेल में जो मैं बात कर रहा हूं वो मैं क्यों कर रहा हूं, उसके पीछे मेरी बहुत स्पष्ट दृष्टि है, और स्पष्ट दृष्टि यह है, देखिए आप मेरे प्रिय श्रोता हैं, एकेडमी पर आपको विश्वास है तभी आप इसे सुन रहे होंगे, लंबे समय से भी सुन रहे होंगे, या आपने बंद कर दिया होगा। मैं ये चाहता हूं कि यदि सच में आप इस डेली ऑडियो लेक्चर को सुनते हैं तो विश्वास करके सुनिए। और आपको आपके उस विश्वास को पुख्ता बनाने के लिए ही मैंने आपको ये लिस्ट उपलब्ध कराई है। और ये लिस्ट अभी मैंने तैयार की क्योंकि 250 क्वेश्चंस के और अगर कुछ दूसरे क्वेश्चंस आएंगे तो उनको मैंने अभी ध्यान से देखा नहीं है। ये जरूर है कि इसमें मैंने जितने मेंशन किए वो सब के सब उसमें है, इस बारे में मैं श्योर हूं। हो सकता है कि 2-4-5 क्वेश्चंस और भी हों। तो जब किसी भी बात पर हमारा विश्वास गहरा होता है तो हमारी गंभीरता उसके प्रति बढ़ जाती है, और जब हमारी गंभीरता बढ़ जाती है तो स्वाभाविक तौर पर यह होता ही है, जब गंभीरता बढ़ जाती है तो उसका जो एडॉप्टेशन है, हम जो अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, वो बढ़ जाती है। और यही कुल मिलाकर के ज्ञान के क्षेत्र में कमाल करने का एक रास्ता भी होता है। तो दोस्तों, हम लोग प्रारंभिक परीक्षा पर और भी बात करेंगे, रिव्यू करेंगे, आगे स्थितियां जैसी होंगी उस तरीके से हम लोग चीजों को आगे बढ़ाएंगे। और मेरी कोशिश होगी कि लगातार एकेडमी आपको अपनी पूरी क्षमता के साथ आपका मार्गदर्शन करती रहे, आपका साथ देती रहे। बस डेफिनेटली हम भी आपके साथ की वैसी ही अपेक्षा करते हैं। तो दोस्तों, जो न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले अपने मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद व्यक्त देता हूं। तो ईमेल लिखने वाले दोस्तों की संख्या आज कुछ ज्यादा है, लेकिन मैं उनके नाम लेना चाहूंगा कुछ दोस्तों के। मोहम्मद आकिब फरीदपुर भोगन उत्तर प्रदेश से, राहुल मुछाला इंदौर मध्य प्रदेश, ज्योति पटेल दर्शन नगर उत्तर प्रदेश, दीपक चौधरी, रोहित सवधानी जयपुर, देवेंद्र सिंह देहरादून, सिद्धार्थ कुमार, महिपाल सिंह देवड़ा माउंट आबू, मंटू जेना ब्रह्मपुर उड़ीसा, अमित दुबे रायपुर, अंकित कुमार गोपालगंज बिहार, अखिलेश यादव बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सिमरनजीत सिंह लुधियाना, पल्लवी अंकित अवस्थी कांकेर छत्तीसगढ़, विशाल सिंह बंगा, पुलकित उषा सरकार इलाहाबाद, हर्षिता उन्नाव उत्तर प्रदेश, धीरेन्द्र प्रताप सिंह एटा उत्तर प्रदेश, दीपक झा ललितपुर उत्तर प्रदेश, देवेश पटेल, स्वाति रानी कीरतपुर उत्तर प्रदेश, बबीता सोनी, शिवांगी गुप्ता पवई उत्तर प्रदेश, किशोर कुमार शर्मा गिरधर प्रणामी सुमित कुरुक्षेत्र से, सतीश कुमार भारती महाराजगंज उत्तर प्रदेश, वीरेन्द्र कुमार कान्हेर और रितेश नायक नई दिल्ली से। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी और सिविल सर्विस के प्रिपरेशन पर और ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।